क्या कार्य करता है और जो अच्छा कार्य करता है उसके संग में रहना सदा सभी को अच्छा लगता है, उसके सहयोगी बहुत बन जाते हैं, उसके सहयोगी बहुत बन जाते हैं, तो दुआएं भी मिलती है, सहयोग भी मिलता है, तो जहां दुआएं है सहयोग है, जहां दुआएं है सहयोग है वहां सफलता है ही है। तो कितनी प्राप्ति है, बहुत प्राप्ति है ना, इसलिए सदा कर्म योगी। जब योग होगा तो कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होगा, जब योग होगा तो कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि योग का अर्थ ही है श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना और स्वयं भी श्रेष्ठ आत्मा हो इस स्मृति में रहना। योग का अर्थ ही है श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना और मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ स्मृति में रहना। तो जब स्मृति श्रेष्ठ होगी तो जब स्मृति श्रेष्ठ होगी तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी ना, और स्थिति श्रेष्ठ होने के कारण न चाहते भी वायुमंडल श्रेष्ठ बन जाता है। तो कर्मयोगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल। कर्मयोगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल। कोई ज्ञान सुने नहीं सुने, योग सीखे नहीं सीखे, लेकिन वायुमंडल का प्रभाव स्वतः ही उनको आकर्षित करता है। मधुबन में क्या विशेष अनुभव करते हो, तपस्या का वायुमंडल है ना, तो जो भी आते हैं उनका योग बिना मेहनत के ही लग जाता है, योग लगाना नहीं पड़ता, योग लग ही जाता है, ऐसे होता है ना। मधुबन में योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वायुमंडल तपस्या का है, संग तपस्वी आत्माओं का है। ऐसे जहां भी आप कर्म योगी बन कर्म करते हो वहां का वातावरण वायुमंडल ऐसे औरों को सहयोग देगा। अनुभवी हो ना, सहयोग मिलता है, बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं, सहयोग मिलता है तो आपका सहयोग भी औरों को मिलेगा। जहां रहते हो वहां सेवा होती है, जहां रहते हो वहां सेवा होती है। सदा कर्मयोगी आत्मा बाप को भी प्रिय है तो विश्व को भी प्रिय है, विश्व के भी प्रिय बने हो या बन रहे हो। देखो कल पहले भी विश्व के प्रिय बने हो तब तो आपके जड़ चित्रों को भी सभी कितना प्यार करते हैं, तो वो आपके चित्र है ना, अपने से इतना प्यार नहीं होगा जितना चित्रों से होगा। तो चैतन्य में बने हो तभी जड़ चित्रों की निशानी देख रहे हो, चैतन्य रूप में अपने जड़ चित्र यादगार देख रहे हो, तो देख करके खुशी होती है ना। हम ऐसे विश्व के प्रिय बने हैं क्योंकि बाप के प्रिय बने हो ना, तो कितनी खुशी है। खुशी में नाचते रहते हो, खुशी में नाचते रहते हो, सभी को खुशी में नाचना आता है कमलेश में? बाबा कहते हैं सभी को खुशी में नाचना आता है, ऐसा कोई है जिसको खुशी में नाचना नहीं आता? सभी को आता है, पाव से नाचना तो किसी को भी आएगा, पाव से नाचना तो किसी को भी आएगा, किसी को नहीं आएगा, लेकिन खुशी में नाचना तो सभी को आएगा। और इस नाचने में थकते भी नहीं, तो सदा नाचते रहते हो। ब्राह्मण जीवन में सिवाय खुशी के और है ही क्या? ब्राह्मण जीवन में सिवाय खुशी के और है ही क्या? दुखदाम को छोड़ दिया ना, तो दुख क्यों आए? और जहां दुख नहीं होगा तो खुशी होगी ना। संगमवासी सदा खुश रहते हैं, कलियुगवासी दुखी रहते हैं। तो संगमयुगी हो या कभी कभी दुखदाम वासी बन जाते हो, संगमी भी हो या कभी कभी दुखधाम वासी बन जाते हो या कभी कभी गलती से चले जाते हो, स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आ सकती, साकार की तो बात ही नहीं है। तो सभी याद रखना कि हम कर्म योगी है, कर्म और योग को सदा साथ रखने वाले हैं। अच्छा, ऐसे सदा खुश रहने वाले कर्मयोगी बाप के प्रिय आत्माएं है। यही खुशी सदा अविनाशी रहे, कभी कभी वाले नहीं, सदा वाले, कभी खुशी कभी दुख की लहर वाले, ये अच्छा नहीं लगता। तो खुश है और सदा खुश रहेंगे। अच्छा, तो आज बाबा ने विशेष सार में बताया है कि सर्व की ब्लेसिंग लेने के लिए कर्म और दुख का बैलेंस है ना। तो श्री बाबा ने क्या कहा कि कर्म में योग, ऐसे नहीं कि जब योग में बैठे तो योगी है और जब कर्म करते हो तो योग को भूल कर्म क्या होता है, महान बन जाता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं हो कि जब योग में बैठते हो तो लगता है कि बैठे ही रहे तो अच्छा है। तो जो आत्मा, आज बाबा ने विशेष कहा कि कर्म और योग का बैलेंस रखती है ना, तो बाबा ने बताया कि उनको क्या होता है, बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग मिलती है, साथ में जो भी संपर्क में आने वाले हैं उनसे भी ब्लेसिंग मिलती है, दुआएं मिलती है ना। और उसके साथ क्या बताया, उसके बहुत सहयोगी बन जाते हैं। तो बाबा ने विशेष कहा कि याद माना क्या, बाप की श्रेष्ठ स्मृति में आत्मा श्रेष्ठ हूं, तो स्मृति से स्थिति से स्थिति से वायुमंडल बन जाता है ना। और बाबा ने लास्ट में कहा कि खुशी में नाचना आता है। तो विशेष जो सार है मुरली का है, तो विशेष है कि जब भी हम कर्म करते हैं तो कर्म और योग का बैलेंस रहे। अच्छा, ओम शांति।
आपका कुछ कर्म योग का अनुभव?
अच्छा, कर्म योग का। अच्छा, ओम शांति। वैसे तो मैंने पढ़ाई बहुत की है, वैसे तो बताता ना मैं किसी को कि क्या होता है, जो भी बैठे है ना बताऊंगा तो सबके हमारे पता जो भाव है ना बदल जाएगा। इसलिए कभी मैं रहता ना, तुम्हें बाबा तो कहता ना हमेशा कि फॉलो वन, एक बाप दूसरा ना कोई है ना। तो मैं मेरे जीवन में दो का फॉर्मूला याद करता हूँ, दो का फॉर्मूला, विशेष बाबा के साथ दो घनिष्ठ संबंध, दो पावरफुल बाबा के महावाक्य, वो जब भी याद आए तो हमारी स्थिति बहुत ऊंची हो जाए। तो पावरफुल समान, जैसे अभी मैंने कहा कि बाबा से दो घनिष्ठ संबंध, तो मैंने बाबा से पहला घनिष्ठ संबंध रखा है, बाबा मेरा माशुक है, सबका माशुक है ना सचिन भाई, तो किस नाम से पुकारता है, माशुक है ना, तो किस नाम से पुकारना चाहिए ना, इतना घनिष्ठ संबंध चाहिए है ना। तो बाबा मुझे मित्री कहता है और मेरा मित्र है, इतना वो प्यार से मुझे बुलाता है, इतना घने संबंध चाहिए है ना। जैसे वैसे दो पावरफुल महावाक्य, तो बाबा की जब भी मैं दो पावरफुल महावाक्य याद करता हूँ ना, तो पहला महावाक्य है कि बच्चे तुम सूर्य तुल्य हो, ये मान शान निंदा स्तुति, ये तो तिमतिमाते दीपक है, और लास्ट का है कि तिमतिमाते दीपक से स्वयं को प्रकाशित करने का तुच्छ संकल्प न करो, एक महावाक्य। और दूसरा है सत्य के सूर्य को असत्य के काले बादल ढक नहीं सकते, असत्य का काले बादल बिखर जाएगा, टूट जाएगा, सत्य का सूर्य ऊपर आएगा, क्योंकि सत्य में स्वतः शक्ति है सिद्ध होने की है ना। और दो समान है, एक में शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न आत्मा हूँ, और दूसरा है बाप समान संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। वैसे तो हमारी लाइफ का जो अनुभवित हो अलग ही है। वैसे मैं भी जो बाहर वाले लोग हैं वैसे मैं ब्रह्मा कुमारी को गाली देता था पहले ही। वो तो अपोजिट था, ज्ञान में पहले हमारे भैया जात चलती थी दो साल से, है ना, तो प्योरिटी कारण में भी भैया को बहुत गाली देता था। हाँ बड़े भाई है ना, तो उनसे ही। वैसे तो एजुकेशन तो मैंने बहुत किया है, तो मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद मैं MBA किया हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि जो जितने पढ़े लिखे होते हैं उनको इस ज्ञान में आना बहुत तकलीफ होती है ना, क्योंकि आम रहता है ना। मैं तो कहता हूँ है ना, मैं सुन बाबा से बहुत थैंक्स करता हूँ कि कितना पढ़ा लिखा हूँ फिर भी बाबा ने मुझे अपना बनाया है ना। तो एक अनुभव बताता हूँ कि जैसे आप पहाड़ी है ना, तो हम वो अभी हमारे पहाड़ी है, वैसे हमारे यहाँ बिजनेस है हमारा। डॉक्टर कुमत बहन जो हमारे आई थी शिवरेली में आई थी, एक बार आई थी, और हमारा बिजनेस शिवरेली में मैं और भैया भाषा हमारा बिजनेस चलता है ना। तो जैसे आप पहाड़ी है वैसे हमारे पहाड़ी हुआ, हम मंडे को शाम को योग के लिए जाते है ना। तो एक बार क्या हुआ, थोड़ा अंधेरा हो गया, चलते थे नीचे आ गए है ना, मैं और मेरा भाई दूसरा एक साथी था, वो साथ साथ चल रहे थे, वो पीछे वो आगे थे, मैं पीछे था। तो मैंने क्या किया, चैतन्य को क्रॉस किया, मैं आगे चला गया, थोड़ा अंधेरा हो गया, तो बीच में एक झुंड होता है, ऐसा झुंड कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हाँ झाड़ी झाड़ी है ना, तो उसमें झाड़ी झाड़ी झुंड, हाँ पेड़ पौधे थे है ना। तो उससे गुजर गया, तो अचानक क्या हुआ, मुझे बहुत चोट आ गई और मैं जोर से चिल्लाया। पहले मैं बोलता था कि माँ या पप्पा बोलता ना, आइएगा क्यों, तो उस समय याद क्या आया, बाबा बाबा, समझ पर इसलिए क्या सर, कुछ कुछ बहुत दर्द हो गया, मुझे कुछ पता नहीं चला क्या क्या हुआ है ना। तो उस समय तो लगभग 7 बज गए थे, तो उसके बाद मैं मुरली चला जाता था ना 7:30 बजे, तो उसमें जाके गया, तो उसके बाद बहुत चोट आ गई थी, बहुत दर्द हो रहा था इस पैर, लेफ्ट पैर में बहुत दर्द हो रहा था, पता नहीं क्या 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 क्या, क्या कुछ पता चले, कुछ क्या काटा है क्या है कुछ नहीं पता चला है ना। तो उसके बाद मैं एक आधा ग्लास पानी पिया, डॉक्टर के पास गया, मैं पता है कैसे ऐसा हुआ है, कुछ चोट लगी है, तो उन्होंने पेन किलर दिया, तो उस टाइम मैंने पेन किलर लिया और थोड़ी देर के लिए वो पेन ठहर गए है ना। तो उसके बाद मैं जाके योग में बैठा 7:15 से 7:30 बजे तक, उसके बाद 7:30 से 8:30 बजे तक मुरली ली है ना। 8:30 बजे तो कुछ नहीं हुआ, जब 8:30 बजे गए बाबा गीत लगा और उसके बाद मुझे चक्कर आने लगे, घूमने लगा घूमने लगा है ना, और बाद में बेचुद है ना, बाद में है ना सबने मुझे लेके हॉस्पिटल ले गए, तो पता चला कि काटा था मुझे, सांप ने काटा था। तो मैंने ऐसा अनुभव किया कि एक कहने घंटा जब मैं बाबा की मुरली चल रहा था है ना, प्रयोग में बैठा, तब तो कुछ नहीं हुआ, बाद में धीरे धीरे उत्तर दिया। और बाद में मैं 4 दिन हॉस्पिटल में था, मेरे पैर में बहुत सूज थी, 4 दिन कुछ नहीं हुआ, चलने के लिए कुछ नहीं आता था, बहुत पैर ऐसा ही हाथ दर्द था। तो घर वाले ने तो ऐसे, घर वाले में हमारे भैया मम्मी पप्पा है, तो ऐसे तो मम्मी पप्पा बहुत अपोजिशन में अभी तक कहते कि शादी करो है ना। तो उनको पता नहीं मेरा तो साजन शिव बाबा है ना, बाबा ने तो मेरी शादी भी किया, उसके साथ भानी मन में भी हम दिल्ली में गए थे है ना। वैसे तो आप सब मधुबन निवासी बहुत सीनियर है हमसे, हम तो बहुत जूनियर है, अभी हमें 3 साल हो गए, बहुत छोटे हैं, फिर भी आप बहुत महान है ना। हम तो यह जब आते हैं ना, बहुत हमको लकी से करते कि कितना वायुमंडल है, कितने आप भाग्यशाली है, फिर भी हम हर साल एक माना यहाँ आते हैं, सेवा करते हैं, और यहाँ हम किसी को पता देने कि हम ये है इतना, जब आते जितने पैसे काम लिखते हैं, तो वो जो सेवा देंगे उसमें राजी खुश मानेंगे। नहीं ऐसा नहीं कि ये जहाँ वो सेवा चाहिए ऐसी सेवा नहीं चाहिए, जहाँ मिलेगा जो बाबा जहाँ बाहर रखेगा, अभी मैं हम विशाल भवन में है, उधर ही खाली पट पिछ होते, कोई बड़ी बात नहीं, क्या जहाँ बाबा रखेगा है ना। तो वैसे मुझे 2 कफा मैंने पता ना, तो मैं वैसे बाबा तो कहते फॉलो ब्रह्मा बाबा है ना, लेकिन मैं 2 को फॉलो करता था, एक जानकी दादी को मेरे रोल मॉडल है, जानकी दादी और जगदीश भाई है ना। तो जानकी दादी के बारे में मैं एक गुण लेता हूँ, उनका उमंग उत्साह, और जगदीश भाई के में इतना ज्ञान बाबा है ना, लेकिन कितने सिंपल रहते थे, सबको पता है ना, देश के बारे में सबको पता है, कितने सिंपल रहते हैं। वैसे मुझे भी लगता है कि ये दिखाने की ज्ञान जितने दिखाने की चीज नहीं लक्ष्य है ना। अभी मैं बोल रहा हूँ ये भी माया है, मैं कभी वैसे भी बोलता नहीं खुद के बारे में, ये भी लेकिन माया है, बोलेगे तो सबका हमारा देखने का, कल से सबका हमारे तरफ देखने का ढंग अलग हो जाएगा है। कोई से किसी को बताता ना। अच्छा ठीक है, ओम शांति।
तो पापा ने आज कर्म योग के बारे में कहा। कर्म योग अर्थात कर्म योग का बैलेंस, कर्म योग अर्थात कर्म करते हुए योग, और दूसरी एक बात कही योग में कर्म, वो क्या है मंजू बेन? बाबा ने कहा कर्म योग अर्थात कर्म करते करते योग, और दूसरी परिभाषा दी योग में कर्म, वो क्या है? कर्म में कौन सा योग, योग में कौन सा कर्म? तो योग अर्थात सकाश, और योग में कर्म नहीं किए तो कौन सा कर्म करना है योग में? स्मृति को श्रेष्ठ रखना। तो योग और मनन चिंतन एक ही है। क्या कहेंगे? बाबा ने कहा है आज कर्म योग अर्थात कर्म में योग तो समझ में आ रहा है, पर योग भी कर्म क्या है, ये चिंतन का विषय है कि योग में कौन कौन से कर्म किया जाए। बाबा ने कहा कर्म योगी यदि है तो श्रेष्ठ स्थिति है, श्रेष्ठ स्थिति यदि है तो श्रेष्ठ स्मृति यदि है तो श्रेष्ठ स्थिति, और श्रेष्ठ स्थिति यदि है तो श्रेष्ठ वायुमंडल, ये कर्मयोग की परिभाषा है। और अगर ऐसे कर्मयोगी हम हैं तो सर्व की दुआएं मिलेगी, सबका सहयोग मिलेगा और विश्व के प्यारे बनेंगे, इतने प्यारे कि द्वापर से भक्तों को चित्रों अपने से ज्यादा चित्र प्यारे होंगे। तो संसार में कर्मयोग की क्या परिभाषा है और हमारी कर्मयोग की क्या परिभाषा है? संसार में कहा जाता है कर्म के फल की चिंता किए बिना जो कर्म किया जाता है वो कर्मयोग, या फिर संपूर्ण तल्लीनता से जो कर्म किया जाता है संपूर्ण उमंग उत्साह से वो कर्मयोग है, या कुशलता से। पर हमारा कर्मयोग वहां नहीं रुकता है, सारी गीता जो लिखी है वो कर्मयोग पर लिखी हुई है, पर हमारा कर्मयोग कुछ और है। हमारा कर्म योग अर्थात कर्म तो कर रहे परंतु योग है, मतलब कर्म तो कर रहे परंतु मन बुद्धि का टाइम टेबल बना हुआ है, कर्म तो कर रहे परंतु हर कर्म में कोई ना कोई समान है, कोई ना कोई श्रेष्ठ स्मृति है, हर कर्म के साथ श्रेष्ठ स्मृति जुड़ी हुई है, चाहे साधारण कर्म है परंतु स्थिति महान है। तो बाबा ने बहुत बार कहा हुआ है कि अमृत वेले के बाद मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ। जिस प्रकार की हमारी दिनचर्या है उस दिनचर्या में कौन कौन से कर्म है पहली बात तो ये, और उस अनुसार उस कर्म के साथ किस किस योग का प्रयोग किया जाए। हमें केवल योगी नहीं प्रयोगी बनना है, तो कर्म के साथ में समान को जोड़ या तो योग के प्रयोग को जोड़ना, ये एक काम दिया है बाबा ने आज। तो सबको कर्म योगी बनना है, केवल बैठा बैठा योगी नहीं, योग स्थिति है, कोई क्रिया नहीं है कि जो की जाए, बैठ गए बाबा के कमरे में योग किया और निकले खलास, ये नहीं, निरंतर स्मृति निरंतर याद। और एक की याद, आज की मुरली में तो कहा कि बाप के अतिरिक्त और किसी को याद किया तो गोया क्या है, पाप, तो वो भी पाप है, वो भी व्यभिचार है। मेरे से सुनो, मेरी मत पर चलो, और कुछ नहीं सुनो। तो हमें अपने योग की जो सफलता है वो कर्म में दर्शन वो दिखनी चाहिए। जो योगी आत्मा है उसके कर्म स्वतः ही महान होने लगते हैं, क्योंकि स्मृति श्रेष्ठ है। तो योग अर्थात स्मृति है एक रीति से। तो श्रेष्ठ स्मृति से श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल, ये याद रखना है। और दूसरा बाबा ने कहा ना सदा खुश रहने वाले हैं, सदा खुश अर्थात खुशी में नाचना है, स्थूल नाचने की बात नहीं है, सूक्ष्म नाचना है। सूक्ष्म स्थिति योग की अगर है श्रेष्ठ तो स्वतः ही हम खुश रहेंगे, दुख धाम को छोड़ दिया है। तो निरंतर यह चिंतन करते रहना है मन में। और जो मैंने कहा ना, एक होमवर्क जो बाबा ने दिया है वो है कि योग में कर्म अर्थात क्या, इसके बारे में सोचो जरा पंचु बहन। योग में कर्म, कौन से कर्म की बात चल रही है जिसको कर्म योगी कहा जाए? एक तो समझ में आता है, परंतु योग में किस प्रकार के कर्म? चिंतन तो अलग चीज है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।
वैसे कर्म है जिसमें बुद्धि का उपयोग ज्यादा करना रहता है ऑलरेडी, उसमें फिर योग का प्रयोग,
उसमें योग का प्रयोग, अगर बुद्धि का जिसमें बहुत ज्यादा काम है तो वो कर्म करने से पहले, याद कर्म के बीच में तो नहीं कर सकते, कर्म होने के बाद उसको समर्पण, ताकि उस कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, हो तो भी बहुत कम से कम। जो भी कर्म करे, अगर बुद्धि वाला काम है, हरेक बहुत कम समय होता है कि हरेक को जहाँ बुद्धि वाला काम रहता है, बहुत सारे सेवाएं तो ऐसी है कि जहाँ बुद्धि का बहुत ज्यादा काम नहीं और लंबे समय से वही सेवाएं कर रहे हैं, तो वो स्वतः ही होती रहती। वो संडे की मुरली में कहा ना बाबा ने, सेवा और स्थिति का बैलेंस। सेवा तो स्वतः ही होती रहेगी, सेवा के लिए मेहनत नहीं है, स्थिति के लिए मेहनत है। सेवा का बल और स्थिति का बल, तो सेवा का बल तो ज्यादा है पर स्थिति का बल कम है। तो बाबा ने कहा ये अगर बैलेंस है तो ब्लेसिंग मिलेगी, नहीं तो नहीं, तो मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। और ऐसे जो बुद्धि वाले कर्म है जिसमें बहुत ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, वहां तो कर्म करने से पहले और कर्म करने के बाद बीच का जो पीरियड है वो तो पूर्ण एकाग्रता का है, क्योंकि हम वहां पर उस तरह से जिस तरह से योग करते हैं, याद करते वो नहीं कर सकते, वहां तो बुद्धि को यूज करना होता है ना। ठीक है, ओम शांति।